उपस्थित महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, प्रेम तत्व मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ तत्व है। ऐसे तो इस व्यक्तित्व में स्थूल तत्व भी बहुत से हैं, भौतिक तत्वों से बने हुए शरीर में देखिए तो बहुत से स्थूल भाग भी हैं और कुछ अंश तो इस शरीर का ऐसा है कि जिसको हम लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बीच से यहाँ से काट करके दो भागियों करके रख दिया जाए तो देखना भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा भी दृश्य बन जाएगा। लेकिन इसी व्यक्तित्व में कुछ अलौकिक तत्व हैं कि जिनके आधार पर मानव जीवन बड़ा ही मूल्यवान हो गया है। उन अलौकिक तत्वों को हम लोग ज्ञान और प्रेम के नाम से जानते हैं। प्रेम रस की अभिव्यक्ति जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि है। छोटी उम्र की बात है, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं मनुष्य हूँ तो मुझे ऊंचा जीवन चाहिए। ऊंचा जीवन क्या कहलाता है, कैसा होता है, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ऐसे ही भीतर से बार 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 ये बात पूछती रहती थी कि बढ़िया जीवन चाहिए, ऊंचा जीवन चाहिए, खा पी करके सो के मर जाने वाला जीवन नहीं चाहिए। तो पिताजी से, चाचा जी से और दरवाजे पर बैठक में कोई साधु संत आ जाए तो उनसे सबसे मैं पूछती रहती थी। ऐसे मालूम होता था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसको पूरा करना है। तो पहली बात जो मुझे सूझी वो ये सूझी कि शरीर को खूब बढ़िया बलिष्ठ रखना चाहिए और खूब पढ़ना लिखना करना चाहिए तो बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, तो ऊंची शिक्षा के द्वारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। तो मैंने इन्हीं बातों के लिए खूब दिल तोड़ परिश्रम किया कि शरीर भी बढ़िया बना रहे और खूब पढ़ना लिखना हो जाएगा तो जीवन ऊंचा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात हुई मेरे जीवन में, और वो क्या हुई कि जब मास्टर डिग्री का आखिरी एग्जामिनेशन ले करके विश्वविद्यालय से मैं निकल रही थी तो एकदम से भीतर से ऐसा अंधकार सुना सुना सा लगने लगा। मैंने कहा 6 वर्ष का समय खूब परिश्रम के साथ मैंने बिताया मास्टर डिग्री के लिए, बहुत परिश्रम किया, बहुत कष्ट सहन किया, लेकिन जिस तरह से मैं उस विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय अपने को अधूरा अधूरा अभाव में पाती थी, आज बाहरी दृष्टि से ऊंची शिक्षा को पूरी करके निकलने के समय भी हृदय उतना ही सूना सूना लग रहा है, भरा पूरा नहीं लग रहा है, भीतर से अभाव नहीं मिटा। तो मुझे पता चल गया कि संसार में रहने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है और समाज में सम्मान पूर्वक कमाने खाने के लिए ऊंची शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन जीवन का जो प्रश्न है वो शरीर से और बौद्धिक विकास से हल नहीं हुआ। तब उसके बाद जा करके फिर और सोचने लगी और सोचा तो मालूम हुआ कि भाई बुद्धि के आधार पर समझ में तो नहीं आता है। अब कोई भगवान के घर का दरवाजा देखा हुआ संत मिल जाए तो मुझको दरवाजे तक पहुंचा दे। तो यह बात मैं भीतर से अनुभव कर रही थी, लेकिन बाहर से कोई प्रयास मैं कर रही हूँ वो बात नहीं थी। कहाँ जाएंगे साधु संत खोजने, किसको समझेंगे कि बढ़िया साधु है, कौन मुझको जाने देगा, कौन मुझे ले जाएगा, कौन ये सब करेगा, वो कुछ नहीं, बाहरी प्रयास कुछ नहीं, केवल भीतर से एक आवश्यकता मालूम होती थी कि अब ऐसा करो तो तुमको पता चले कि ऊर्जा जीवन कैसा होता है, भरपूर जीवन कैसा होता है, दुख से, अभाव से, सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी से फ्री लाइफ कैसा होता है। ये तो कोई अनुभवी महात्मा मिले तो बतावे। तो आवश्यकता मेरे भीतर थी, बाहर से मैंने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन मंगलकारी प्रभु का विधान इतना मंगलमय है कि उन्होंने मुझको अनुभवी संत से मिला दिया। और उनसे मिलने के बाद, उनके साथ रहने के बाद, उनके द्वारा ज्ञान और प्रेम पूर्वक जो मेरी सेवा हुई, संत के द्वारा मेरी सेवा हुई, मैंने संत की सेवा की ऐसा नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से मेरी बड़ी सेवा की। और जब मैं गई थी उनके पास तो एक साल का समय बीत गया। फिर वही दिन आ गए, 1 जनवरी 1954 को मैं मिली थी उनको, तो 1 जनवरी 1955 का आया तो स्वामी जी महाराज बातचीत करते करते कहने लगे, मेरा बच्चा 1 साल का हो गया, मेरा बच्चा 1 साल का हो गया। तो ये उदाहरण मैं अपनी कथा आपको सुना करके बता रही हूँ कि ये बात जो मैं निवेदन करती हूँ जिज्ञासु और सत्संगी भाई बहनों के भीतर, कि भाई आवश्यकता अपने भीतर होती है, लेकिन पूर्ति का सारा इंतजाम प्रभु स्वयं करते हैं। हमारे साथ तो किया है, इसलिए मैं कहूंगी, उनका गुण गाऊंगी। और अनुभवी संत ने मुझको बताया, स्वामी जी महाराज ने अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से मेरी बहुत सेवा की। और उनके पास रह करके, उनके ज्ञान पूर्ण व्यक्तित्व की छाया में पल करके, उनके प्रेम की गोद में शक्ति ले करके, मुझे इस बात का पता चला कि मनुष्य का जीवन सबसे ऊंचा कब होता है और सबसे बढ़िया उपलब्धि उसके भीतर क्या है। तो मूल रूप से प्रेम तत्व जो उसमें विद्यमान है, उस प्रेम तत्व का विकास जब हो जाता है तो मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। ये मुझे उनके पास बैठने के बाद मालूम हुई। और आज मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभव करती हूँ कि समाज में कितना भी सम्मान मिल जाए और बाहर से लोग आपको कितना भी साधु समझने लग जाए, भक्त समझने लग जाए, वक्ता समझने लग जाए, विद्वान समझने लग जाए, सामाजिक कार्यकर्ता समझने लग जाए, बहुत श्रीमान, रूपवान, गुणवान समझने लग जाए, अथवा इन सब परिस्थितियों से हो करके आप गुजरे, लेकिन भीतर पूर्णता की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक ना इस व्यक्तित्व के अलौकिक तत्वों का विकास हो जाए। अर्थात ज्ञान और प्रेम का विकास जब तक नहीं होता है, जीवन पूर्ण नहीं होता है, अधूरा अधूरा उसमें रहता है। एक विदेशी सज्जन हिंदुस्तान में आना चाहते थे यहाँ के संतों से मिलने के लिए, कुछ उनके भीतर अभाव की पीड़ा उन्हें सता रही थी। तो सज्जन तो बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, स्विट्जरलैंड में साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूशन है, उसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर बर्ग, और बड़े नामी आदमी हैं, बहुत धन भी है उनके पास और बहुत से शिष्य भी हैं उनके, संसार के बहुत से भागों में उनके पढ़ाए हुए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि मानसिक रोगों की चिकित्सा करने में लगे हुए हैं। तो उनको सुख भी है, सम्मान भी है, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, योग्यता भी है, संपत्ति भी है, पद भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक मनुष्य है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक मनुष्य है, इसका अर्थ क्या है कि संसार उसके पास बहुत अनुकूल रूप धारण करके आया है, फिर भी वो भला आदमी अनुभव करने लगा कि ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ और चाहिए। तो उसने जो स्वामी जी महाराज को पत्र लिखा, पटना यूनिवर्सिटी से कुछ लोग गए थे, उन्होंने महाराज जी का परिचय दिया था, पूछा होगा उसने, इन्होंने बताया होगा हिंदुस्तान के लोगों ने। तो उसने जो पत्र लिखा, उसने ये लिखा कि मोर एंड मोर वी स्टडी इन साइकोलॉजी फाइंड अवर सेल्स हैंगिंग इन एयर, आवर फाइंडिंग्स आर बेसलेस, therefore I want to come to Indian science to find something solid, something more dependable which I can give to my students। ये उसने लिखा। तो स्वामी जी महाराज के पास मैं पढ़ करके सुना रही थी और हंस रही थी। मैंने कहा, स्वामी जी महाराज, इस भले आदमी ने भगवान का एक नया नाम सुनाया हम लोगों को, समथिंग सॉलिड, समथिंग मोर डिपेंडेबल। अब वो बेचारे को यही भाषा आती थी, वो नहीं कह सकता था कि मुझे सच्चिदानंद स्वरूप चाहिए, कि मुझे पूर्ण ब्रह्म चाहिए, कि मुझे मैया कौशल्या का लाला राम चाहिए, कि मैया यशोदा का लाला कन्हैया चाहिए, ये सब वो नहीं कह सकता था। उसको मालूम ही नहीं था, बैकग्राउंड ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था, लेकिन वो फील कर रहा था भीतर भीतर कि बाहर से इतना जो कुछ मुझको मिला है ये सब बेसलेस है, ये सब हवा में डोल रहा है, ये सब निराधार है, इसके द्वारा जीवन में उसको सॉलिडरिटी की तरह कुछ नहीं मालूम होता था। तो समथिंग सॉलिड, आई वांट समथिंग सॉलिड, आई वांट समथिंग मोर डिपेंडेबल। तो भगवान का एक नाम मोर डिपेंडेबल भी है। महाराज जी से मैंने कहा कि बेचारे को मोस्ट डिपेंडेबल कहने नहीं आया। तो वो जो देख रहा था वो उसको निराधार निराधार लग रहा था। क्यों भाई? तो योग्यता भी थी, संपत्ति भी थी, सुख भी था, सम्मान भी था, पद भी था, बहुत कुछ था। तो ये सारी चीजें जो संसार की सीमा के भीतर उसको मिली थी, दूसरे लोगों के लिए बहुत आकर्षक मालूम होती होंगी, लेकिन उसने जो स्वयं उन वस्तुओं का प्रयोग करके देखा तो उसको पता चल गया समथिंग मिसिंग, भीतर भीतर कुछ कम है। उस कमी को अनुभव करके वो भला आदमी हिंदुस्तान में आया, संतों से मिला, उसकी कमी पूरी हो गई। न मंत्र दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी, न अध्ययन करने की जरूरत पड़ी, न भूखे नंगे रहने की जरूरत पड़ी, न कुटिया बनाकर वन में बसने की जरूरत पड़ी। उसके भीतर बड़ी जबरदस्त प्यास थी कि आई वॉन्ट समथिंग सॉलिड, मुझको समथिंग सॉलिड चाहिए। हम लोग अपनी परंपरा की भाषा में कहते हैं कि हम लोगों को अविनाशी जीवन चाहिए, हमको ऐसा आधार चाहिए कि जिससे कभी वियोग न हो। दुनिया के जितने आधार अपने को मिले, एक दिन मिले तो बड़ी खुशी मनाई गई और दूसरे दिन वे आधार छूट गए तो बड़ा शोक मनाया गया। होता है, हो रहा है। हमारे जान पहचान के एक सज्जन, उन्होंने बड़ी धूमधाम से लड़की की शादी की और बड़े प्रसन्न थे, मैं वहाँ मौजूद थी, बड़े प्रसन्न थे और मुझको अपने घर में बुलाया था, सब समाचार बताया था, दिखाया था और कहा था कि बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, विदेश में बड़ा बढ़िया व्यापार उसका चलता है, खूब पढ़ा लिखा है, ये वो सब हो गया। कुछ दिनों के बाद मैं जब वहाँ से आ गई थी, बाद में शादी हुई, तो कुछ दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला कि बारात आ गई, रात के समय शादी हो गई और दूसरे दिन सवेरा होने से पहले लड़के का देहांत हो गया, हार्ट फेल हो गया। तो ये आधार है। बहुत दिनों तक मैं सोचती रह गई कि ये क्या हुआ। तो यहाँ का आधार तो ऐसा ही है कि आता है, मिलता है, तो व्यक्ति बहुत ही शक्ति के साथ उस आधार को पकड़ करके अपने को भाग्यशील समझता है, अपने को सिक्योर समझता है, अपने को बड़ा सुखी समझता है, और वो बेचारा जानता ही नहीं है कि इसको बुलाने में और पकड़ने में और इस आधार को अपना सहारा बनाने में जितना समय लगा है, छूटने में उतना भी नहीं लगेगा। नहीं जानता है, अबोध, अज्ञान, संसार के स्वरूप से अपरिचित, बड़े जोर से पकड़ता है आधार को और छूट जाता है, तो सिवाय हाय हाय के और कुछ बचता नहीं है। तो हम लोग अपनी परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं कि मुझे तो वह आधार चाहिए कि जिसको पकड़ करके फिर कभी दुनिया में असहाय न होना पड़े। तो हम लोग इस भाषा में प्रकट करते हैं अपनी आवश्यकता को, अपनी मांग को। डॉक्टर बॉस ने दूसरी भाषा में प्रकट किया, आई वॉन्ट समथिंग सॉलिड, आई वॉन्ट समथिंग डिपेंडेबल। तो उस बेचारे को न मंत्र दीक्षा लेनी पड़ी, न बाहरी कोई इंतजाम करना पड़ा, भीतर से उसकी जोरदार प्यास थी कि मुझको वो चाहिए। उसके लिए बड़ा बढ़िया संयोग था जो उसने यहाँ के सब चकमक देख लिए थे, और वो सजग आदमी, वो सजग व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह से पहचान गया कि यहाँ जो कुछ मिला है उसमें कुछ भी सॉलिड नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, ये उसने फील कर लिया था, मालूम हो गया था उसको। तो इधर की ओर से उसका विश्वास उठ गया, ये नहीं कि उसने डायरेक्टर के पोस्ट को छोड़ दिया हो, छोड़ा नहीं, अभी भी डायरेक्टर है वो वहाँ पर, तो पद को छोड़ दिया हो तो नहीं किया, खाना पीना छोड़ दिया हो तो नहीं किया, कपड़े छोड़ दिया हो तो नहीं किया, वन में भाग गया हो कि पढ़ाने का काम छोड़ दिया हो तो कुछ नहीं, लेकिन उसने अनुभव किया कि ये जो कुछ है वो सॉलिड नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। तो केवल इस अनुभव करने मात्र से संसार से उसका संबंध टूट गया। समझ में आता है, तो ये पद्धति स्वामी जी महाराज हम लोगों के सामने रखते हैं। हमारे लोगों का एक एक अजीब प्रकार का ख्याल बना हुआ रहता है, एक धारणा बनी हुई रहती है कि भाई चलो अब सत्संग की तैयारी करनी है, अब जीवन की खोज करनी है, तो जल्दी जल्दी हिसाब खत्म करो, जल्दी जल्दी दुकान बंद करो, जल्दी जल्दी परिवार वालों से छुट्टी मांगो। एक सज्जन हमारे पास आश्रम में आए तो कहने लगे कि बहन जी हम क्या क्या तैयारी करें। तो हमने ऐसे ही कहा, अरे भैया तैयारी करने की क्या बात है, अगर इस दृश्य जगत में से अपना विश्वास उठ गया तो ये जहाँ के तहाँ कुशल से रहेगा, आपका काम बनेगा। तो कहने लगे कि तब मैं बाल बच्चों को लिख करके भेज दूँ कि अब हमको तो मत मानना, तो उन बेचारे को विश्वास दिलाने के लिए मैंने कहा कि हाँ लिख दो। तो हरेक को, एक लड़की विदेश में थी, एक लड़की वहाँ भिलाई में है और लड़का है इलाहाबाद में, तो सब जगह उन्होंने पत्र लिख लिख के भेजा कि देखो अब मैं साधक बन रहा हूँ, अब मैं सत्संगी बन रहा हूँ, अब मुझको संसार से संबंध तोड़ना है, तो तुम लोग अब ऐसा मान लो कि तुम लोगों की ओर से मैंने संबंध तोड़ दिया और मुझको अपने काम के लिए बुलाना मत, बुलाने की चिट्ठी मत लिखना। और बेचारे जो जो समझ रहे थे अपने लिए उपयोगी सब चिट्ठी लिख लिख के भेज रहे थे, लिखे और ला करके मुझको दिखाएं, बहन जी देखिए मैंने ऐसा लिखा है, उम्र में बड़े हैं भाई साहब, कहती हूँ मैं उनको बहुत आदर सत्कार है उनके प्रति। तब भी तो आदमी के भीतर एक ख्याल बना हुआ है कि बाहर से कुछ क्रिया करेंगे तो संबंध टूटेगा। अरे भाई संबंध अगर क्रिया से बना होता तो क्रिया से टूटता, संबंध तो तुम्हारे मान लेने से बन गया है, तुम मानना छोड़ दो टूट गया, जिस दिन डॉक्टर बोस स्विट्जरलैंड से चल रहा होगा हिंदुस्तान आने के लिए, उसके पहले ही उसका विश्वास उठ गया संसार की उपलब्धियों में से, वो संबंध टूट गया, उसमें विश्वास नहीं रहा, काम नहीं छोड़ा, काम के बदले में जो मिला उसका महत्व उसके जीवन में से निकल गया, परिस्थिति को नहीं बदला, उसने अपने विचारों में परिवर्तन ले लिया कि ये सब सॉलिड नहीं है, ये सब डिपेंडेबल नहीं है। और सुना है ऐसा कि हिंदुस्तान में साधु संत जो होते हैं उनके पास समथिंग सॉलिड होता है, ये उसने सुना था। तो यहाँ तो कुछ नहीं मिला है, अब चलो हिंदुस्तान जाते हैं, वहाँ साधु संतों के पास कुछ सॉलिड होगा, कुछ डिपेंडेबल होगा तो वे दे देंगे। सोच करके वे आए और केवल संत की कृपा दृष्टि के आगे खड़े होने मात्र से ही उनके भीतर जो अभाव था वो भर गया, और जो कमी महसूस होती थी वो पूरी हो गई। तो उसे कुछ भी तैयारी नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही हो गया। यह उदाहरण दे करके भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि यह मानव जीवन का सत्य है। यह एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं है, और ऐसे ही सत्य का दर्शन स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए, जिन्होंने कलिकाल के हम सभी अल्प सामर्थ्य वाले साधकों पर कृपा करके यह बता गए, हम लोगों को सुना गए कि भैया मानव के जीवन की एक बड़ी विलक्षणता है। वो विलक्षणता क्या है कि यदि तुम सत्य से अभिन्न होना पसंद करते हो, यदि तुम सर्वोच्च जीवन की आकांक्षा रखते हो, यदि तुम प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रेमी होना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर की जो यह मांग है वो मांग ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। तुम्हारे भीतर आवश्यकता महसूस होने लग जाए तो आवश्यकता महसूस होने मात्र से वह भीतर ही में विद्यमान तत्व जो है अभिव्यक्त हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति से जीवन भरपूर हो जाता है। फिर जो एक मैं हूँ और ये मेरा दृश्य है, ये द्वैत का जो भ्रम बना हुआ है, ये भ्रम मिट जाता है। क्या हो जाता है? सीमित अहम भाव की सीमा समाप्त हो जाती है। सीमित अहम भाव की सीमा समाप्त होने से वास्तविक जीवन के साथ अभिन्नता हो जाती है। आज हम सब लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? तो ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि क्या बताऊं, मुझ में संसार का बड़ा आकर्षण है, संसार की ओर बड़ा खिंचाव है, बड़ा चिंतन भी है, शरीर के नाश हो जाने का भय भी है, और अच्छी सुखद परिस्थितियों के बदल जाने का भय भी है, और क्या बताऊं इन सारी अप्रिय दशाओं के भीतर भीतर से प्रभु प्रेम की अभिलाषा भी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी अप्रिय दशाओं के भीतर से प्रभु प्रेम की अभिलाषा को पालते रहते हैं, उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, और फिर प्रेम रस की सरसता और मधुरता से जन्म जन्मांतर की प्यास मिटाना चाहते हैं। है कि नहीं है जी? ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कैसे होगा? क्या हम लोग प्यासे प्यासे आए हैं दुनिया में और ऐसे ही प्यासे प्यासे चले जाएंगे? ठीक, जाना तो नहीं चाहिए। यहाँ हम आए हैं, धरती पर खड़े होने का टैक्स नहीं दिया है, आकाश में अवकाश लेने का कोई बिल पेमेंट नहीं किया है। महाराज जी एक दिन कहने लगे कि बड़ा अभिमान करते हो, अरे सूर्य भगवान रोशनी देते हैं, ताप देते हैं, बिल भेज दें तो पेमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो प्रकृति की ये शक्तियाँ, प्राण वायु आपको सांस लेने देती है, सूर्य आपको ताप और प्रकाश देते हैं, धरती आपको आश्रय देती है, आकाश आपको अवकाश देता है, ये सारी प्रकृति की शक्तियाँ मिल करके हम लोगों की मदद करती हैं कि जीवन को धारण कर सको। तो जीवन धारण करने का एक विशेष अर्थ होना चाहिए, और विशेष अर्थ क्या होना चाहिए कि अगर भीतर भीतर मेरे उस अविनाशी जीवन की जिज्ञासा है, अगर भीतर भीतर मेरे प्रभु प्रेम के मधुर रस की प्यास है, तो प्रकृति की शक्ति इस शरीर के अणु परमाणुओं को बिखेरेगी, ये मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, प्राण महाप्राण में समाएगा, वायु वायु में, जल जल में जाकर के समाएगा। ये क्रिया प्रकृति करेगी, उसके पहले अपने लोगों को अपना प्रोग्राम पूरा कर लेना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जरूर चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अस्पताल में भर्ती होने का समय दिया गया कि तुम औषधि का सेवन करना, आरोग्यता के सब उपाय करना, डॉक्टर जो बताए सो करना, पथ्य करना और स्वस्थ होकर के चले जाना, और कोई अस्पताल में भर्ती हो जाए और डॉक्टर की सहायता ले ले, दवाई ले ले, सब ले ले, पथ्य ले ले और उनका सेवन न करे, बीमार होके वहाँ पड़ा ही रहना पसंद करे, तो जो रोगी दवा भी न खाए, पथ्य भी न करे, डॉक्टर का कहना भी न माने, आरोग्यता भी प्राप्त न करे, तो उसको अस्पताल में रहने का आदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो मानेगा ही नहीं, तो नियम के अनुसार उसको निकाल दिया जाएगा कि तुमको आरोग्य होना ही नहीं है, तो यहाँ रहते हो काहे को, जाओ, हटा दिया जाएगा। प्रकृति के विधान में ऐसा ही नियम हम लोगों के लिए शरीरधारी बनकर दुनिया में रहने के साथ में है। मैंने स्वामी जी महाराज के मुख से भी सुना है, और हमारे समय में वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ाई जाती थी, उस समय भारतीय दर्शन का अध्यापन भी नहीं होता था उस विश्वविद्यालय में जहाँ मैंने अध्ययन किया। तो वेस्टर्न फिलोसफी के एक सिस्टम में भी मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि प्रकृति ने, सृष्टिकर्ता ने, जीवन दाता ने मनुष्य को अवसर दिया है। किस बात का अवसर दिया है कि जो ज्ञान का प्रकाश उस ज्ञान स्वरूप में से आ रहा है, उस प्रकाश में तुमको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जैसा कि डॉक्टर बॉस को दिखाई दिया कि ये सब सब हवा में डोल रहा है, बेसलेस है, ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो जैसे उसको दिखाई दिया, वैसे क्या हम लोगों को दिखाई नहीं देता? दिखता तो है। तो ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दे रहा है, तो इस दृश्य जगत में से जीवन बुद्धि निकालो। कब निकालोगे? स्वास्थ्य ठीक है तभी तक निकाल लो, सांस चल रही है तभी तक कर लो, चेतना बनी हुई है तभी तक कर लो, नहीं तो क्या हो जाता है? बड़ी दर्दनाक दशा होती है महाराज, मैं क्या बताऊं? ऐसे ऐसे सत्संगियों को मैंने देखा है जो बहुत दिनों से संतों के पास आ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, और अब उनका क्या हाल है कि वृद्धावस्था के कारण मेमोरी फेल हो रही है, स्मृति अब काम नहीं कर रही है, बैठ नहीं सकते हैं, अभी भी सुनने के लिए आ रहे हैं, लेट जाते हैं, सुनते हैं, आधा सुनाई देता है, आधा नहीं सुनाई देता है, जो सुनाई देता है वो समझ में नहीं आता है, जो समझ में आता है वो याद नहीं रहता है, फिर भी उनका सत्संग सुनने का काम बाकी रह गया है, पूरा नहीं हुआ। ऐसी दर्दनाक दशा मैंने आंखों से देखी है, तो मैं अपने को भी चेतावनी ले रही हूँ और आप भाई बहनों से भी सर्वद्र प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई वो घड़ी मत आने दो कि समय निकल गया और काम बाकी रह गया, ऐसा मत आने दो। क्या कर लो कि ये काम पूरा कर, शरीर का नाश हो पीछे और शरीर की आसक्ति टूट जाए पहले, नाशवान विमुक्त होगा पीछे और अविनाशी के ज्ञानमय प्रकाश से और प्रेममय रस से धन्य हो जाओ पहले। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हो सकता है, हम सभी भाई बहनों के साथ हो सकता है, इसी वर्तमान में हो सकता है। आज मैं महाराज जी का एक वचन सुन रही थी तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, क्या जाने फिर दूसरे साथ हम तुमसे कहने के लिए आ सके कि नहीं आ सके, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे भीतर ये चीज भर देना चाहता हूँ कि एक बार मेरे सामने बैठ करके सुनते हुए तुम इस बात को स्वीकार कर ही लो कि मैं पसंद करूंगा तो मरने से पहले परमात्मा मुझसे भेंट मुलाकात कर लेंगे। विश्वास कर लो, इस बात को मान लो, इसमें संदेह मत रखो। अगर मान लोगे तो तुम्हारे भीतर छटपटी पैदा हो जाएगी, तुम्हारे भीतर उत्कंठा जग जाएगी। और उदाहरण दिया शबरी का, उनके गुरु ने कहा कि शबरी जी आप यहीं पर विराजमान रहिए, इसी आश्रम में रह करके साधन कीजिए, प्रभु जब आएंगे तो आपको इसी जगह पर मिलेंगे। तो उसने सुन लिया गुरु की वाणी से तो उसके भीतर एक स्टैंप लग गया, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। तो वो तो वेदांत का सत्संग उसने सुना ही नहीं था, शास्त्रों का अध्ययन उसने किया ही नहीं था, जिंदगी का विवेचन उसके सामने था ही नहीं। भगवान आएंगे तो उनसे मुक्ति मांगेंगे कि भक्ति मांगेंगे कि क्या मांगेंगे, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो भगवान से हम क्या मांगेंगे, क्या लेंगे? आएंगे तो कैसा उनका रूप होगा, कैसा उनका रंग होगा, कैसे मैं पहचानूंगी, कौन तिथि को आएंगे, कितने बजे आएंगे, वो सब कुछ नहीं। गुरु ने कहा कि प्रभु आएंगे और आएंगे इस आशा में उस महिला के भीतर ऐसी उत्कंठा जग गई, ऐसी उत्कंठा जग गई कि संध्या समय घर कुटिया को साफ करके चटाई बिछा करके दीपक जला के दरवाजे पर रखती है और अपलक नैनों से वनपंथ निहार रही है, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आते होंगे, प्रभु आएंगे, अब पहुंच जाएंगे, अब आ जाएंगे, करते करते उस गहरी उत्कंठा में उसके भीतर अलौकिक अविनाशी रस की ऐसी बाढ़ आ जाती कि शरीर धर्म उसका छूट जाता, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, नींद नहीं है। संध्या काल बैठी थी, सवेरा हो गया, कैसे रात बीत गई पता नहीं है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अवतारी पुरुष बन करके साकार सगुण साकार प्रत्यक्ष हो करके आए बहुत देर में, लेकिन अपने ज्ञान स्वरूप से, अपने प्रेम स्वरूप से वे तो उसी दिन मिल गए शबरी को जिस दिन उसने गुरु की वाणी में विश्वास किया। अपना स्वाद भूल गई, अपना खाना भूल गई, अपना सोना भूल गई, सर्दी गर्मी का पता नहीं है, दिन रात का पता नहीं है, अखंड स्मृति, अबाध प्रियता। आएंगे तो क्या खिलाऊंगी, क्या पिलाऊंगी, कैसे आनंदित करूंगी, स्तुति करने तो हमको आएगा ही नहीं, तो कैसे उनकी अभ्यर्थना करूंगी। तो जो कुछ उसके भीतर है, अभिलाषा जो है, वो प्रभु को आराम देने की है, उनको प्रसन्न करने की है। अपनी मुक्ति भक्ति की बात हो बेचारी जानती ही नहीं थी, क्या सोचेगी क्या करेगी। तो ये उदाहरण है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे सोचने के लिए कि कितनी बढ़िया बात है स्मृति। जो जो भगवत स्मृति मनुष्य के भीतर एक बार जग जाती है तो स्वामी जी महाराज ने बहुत ही विशद और बहुत गहन व्याख्या किया है स्मृति शब्द का। वो कहते हैं कि स्मृति प्राप्ति के समान फल देने वाली होती है। स्मृति साधन की अभिव्यक्ति का आरंभ भी है और साध्य से अभिन्न होना भी है। स्मृति की बड़ी महिमा है। आज अपनी दशा पर बहुत लज्जा आती है सोच करके कि जो अपना नहीं है उसकी याद तो भीतर में जबरदस्ती भरी हुई है, और जो सदा सदा से अपना है, जब मैं उनसे नाराज रहती थी तब भी मेरी रक्षा करते थे, जब मैं उनकी आलोचना करती थी तब भी वे मुझ पर कृपा बरसाते थे, ऐसे जो अपने से अधिक मेरे हित चिंतक है उनकी याद आती नहीं है, याद करने की तैयारी करनी पड़ती है। लाज शर्म की बात है कि नहीं? कभी तुम्हारा होकर रह न सका, कभी तुम्हारा होकर रहेगा नहीं, उसकी याद तो भरी पड़ी है। और ये शरीर जिस दिन मातृ गर्भ में उल्टे लटका हुआ था, जिस दिन शिका पर जल रहा था, उस दिन भी जिसने मेरा साथ नहीं छोड़ा उसकी याद करनी पड़ती। क्या कर? तो भाई इस दशा को मिटाना पड़ेगा और आज ही मिटाना पड़ेगा और प्राण पण से इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कौन सा पुरुषार्थ? जो तुम्हारा नहीं है उसमें से अपना विश्वास उठा लो, जैसे डॉक्टर बोस ने उठा लिया। और जो तुम्हारा है वो ना दिखे तो ना सही, और मैं तो भला मनाती हूँ कि वो नहीं दिखता है। नए नए साधक लड़के लड़कियां स्वामी जी महाराज के पास आते ना, तो महाराज कहते कि भाई चलो चलो तुमको उसके हवाले कर दें। तो लड़कियां कहती कि स्वामी जी महाराज आपको तो सस्ता पड़ गया है, कन्याएं मिलती जाती हैं, एक दामाद चुन के रखा है, सबको उसके हवाले करते जाते हैं, सस्ते हो गए। तो हम लोग कैसे माने उसको, दिखते तो है नहीं, जानते तो है नहीं। तो हमारा दिखो भाजते कहते कि देखो बालिका हो, हमारा कोई और होता तो मैं सोचता, हमारा तो एक ही है, हमारे पास आओगे तो हम उसी को देंगे। और वो इतने समर्थ है कि सारी सृष्टि के जितने लोग उसके होना पसंद करते हैं वो सबको निकाल सकता है। बड़ा वीर है, बड़ा बड़ी सामर्थ्य है उसमें, बड़ा ही ऐश्वर्यवान है। तो और लोग जो कहते थे कि दिखता नहीं है तो मैं क्या करूं, कैसे उसको अपना मानूं, तो मैंने जब अपनी ओर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा कि महाराज अच्छा है कि वो दिखता नहीं है, अच्छा है कि वो दृश्य जगत में शामिल नहीं हुआ, नहीं तो ये सारा देखा हुआ तो भागता जा रहा है भागता जा रहा है। वो भी अगर दृश्य जगत में शामिल हो जाता तो सब दृश्यों के संग वो भी भाग जाता, तो हम तो रह जाते ऐसे ही, कहाँ जाते फिर किसके पास। तो बड़ी अच्छी बात है कि वो दृश्य जगत में शामिल नहीं हुआ। और एक बढ़िया बात स्वामी जी ने बताई, उन्होंने गोपी कृष्ण की एक लीला सुनाई, बड़ा दर्शन है उसमें, बड़ा रहस्य है। कहने लगे कि एक दिन लीलाधारी के मौज में आ गई तो उन्होंने कहा कि सखियों सखाओ चलो आज हम एक खेल खेलेंगे, मैं छिप जाऊंगा तुम लोग खोजना। तो अच्छी बात है, शॉर्ट करके कौन नहीं छोटा। तो छिप गए और सब लोग खोजने लगे, इस कुंज में चलो उस कुंज में चलो, यहाँ खेलते होंगे चलो, वहाँ बंसी बजाते होंगे चलो, वहाँ गऊ के बीच में छिप गए होंगे, चलो उस पहाड़ की गुफा में छिप गए होंगे, चलो जमुना तट पर चलो, खूब खोजे खूब खोजे, चारों ओर घूमते फिरे घूमते फिरे, पता ही नहीं लगे, कहीं नहीं मिले, क्या करें। तो कहने लगी एक सखी कि छोड़ दो, अब तो नहीं मिल रहा है, अब क्या हो गया कि साधक की सब दौड़ धूप खत्म हो गई, प्रयास सारा खत्म हो गया, अब कहाँ जाएंगे, अब कोई जगह नहीं खोजने की, तो अब छोड़ दो, अब चल के बैठो और उनकी लीलाओं का कथन करो, उनके गीत गाओ, तो उससे आकर्षित होकर आ जाएंगे। ये भी चला, फिर भी नहीं मिले। तो सब प्रकार से जब वे लोग हार गई और एकदम व्याकुल होकर के, कोई मूर्छित हो रहा है, कोई अधीर हो रहा है, कोई अपनी असमर्थता सोच रहा है कि हाय हम तो ढूंढ ही नहीं सके, प्यारे तुम कहाँ हो, करके जब सारा प्रयास खत्म हो गया तो इसी में प्रकट हो गए। तो प्रकट हो गए तो सब बहुत आनंदित हो गए, तो खूब खेल होने लगा, सब आनंद मनाया जाने लगा। तो एक गोपिका सखी जो थी वो आके कहने लगी पकड़ के उनको कि प्यारे सच बताओ तुम कहाँ छिपे थे, हमने तो बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, कोई जगह नहीं छोड़ी, तुम तो कहीं मिले नहीं, सच बताओ तुम कहाँ थे। तो वो तो सत्यवादी हैं, कहते हैं कि मैं कभी मिथ्या नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ। तो कहते हैं कि सखी मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, मैं तो तुम्हारे में ही छिप गया था, तुम्हारे ही में छिप गया था। तो इतनी सच्ची बात है कि हम लोग सोचते हैं कि परमात्मा तो दिखता नहीं है, तो भाई मुझसे बाहर हो तब न दिखे, ये रहस्य पकड़ में आता है। वो तो तुम्हारे ही में है, तो जो अपने ही में है वो अपने से अलग दिखाई कैसे देगा। तो कभी मत सोचना कि वो अलग से दिखेगा तब हम उसके भक्त बनेंगे, भक्त बन जाओगे तो वो एक ही दो बन करके खूब लीला करता है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन भक्त बनने के पहले सोचो कि वो मुझे दिखे तो कैसे दिखेगा, जो तुम्हारे ही में है, जो स्वरूप में ही है, जिस स्वरूप में ही तुम हो, तो जो स्वयं ही है, जो स्वयं ही है, वो दृश्य कैसे बनेगा, इसलिए वो दिखता नहीं है। तो बिल्कुल सच्ची बात उन्होंने बता दी, सखी मैं तो तुम्हारे ही में छिपा था, तो है वो अपने भीतर, और सखियां ढूंढ रही है बात, इस कुंज में जाओ, उस गली में जाओ, उस वन में जाओ, उस वृक्ष के नीचे देखो, उस गुफा में देखो, उस गऊ की मंडली में देखो, उस यमुना जी के तट पर देखो, देखो भाई दौड़ते फिरो। हम लोग भी दौड़ते फिरते हैं, वहाँ हरिद्वार में जाके बसेंगे तो मिलेगा, वहाँ जाके ऐसा करेंगे तो मिलेगा, अब ऐसा खाएंगे तो मिलेगा, अब ऐसा पहनेंगे तो मिलेगा, अब हरि भाई किसी दिन सोच सकते हैं कि समाज का काम छोड़ के चुप बैठो तो मिलेगा, तो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये देखो वो देखो, कर लो, वहाँ नहीं जाता है तो क्या करोगे। लेकिन भाई सच्ची बात क्या है कि जो अपने ही में है, वो स्वरूप नहीं है, जिसमें तुम हो, जो तुम में है, वो बाहर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलता है, उसकी जरूरत अनुभव करो तो वो तो एकदम तैयार खड़ा है। प्यार की जो भावना है और प्रेम का जो रस है, वो हम लोगों से भी ज्यादा परमात्मा को मीठा लगता है, स्वाद वही जानते होंगे, हमको तो क्या पता, हम तो वासनाओं की तृष्णा में जलते हैं, तो प्रेम रस का मधुर स्वाद कैसा होता है हमको क्या पता, लेकिन उनको पता है। तो उनको बड़ा चाव है इस बात का, आपके भीतर आवश्यकता जग जाए तो वहीं पर वे मौजूद हैं, उनको दूर से कहीं से चल के आना नहीं है, है निकल गया तो प्रेम ही प्रेम रह गया, तो ज्ञान ही ज्ञान रह गया। तो ऐसा जो प्रेम स्वरूप ज्ञान स्वरूप शुद्ध रूप का साधक है, उसके संग खेलना, उसका जूठन खाना, उसको गोदी में उठाना, उसको पीठ पर चढ़ाना, उसको हर प्रकार से रिझाना, भगवान का खेल हो जाता है। तो तुम क्या करोगे, हमने हमने जिन संत की शरण में बैठ करके साधना आरंभ किया, उनसे भी सेवा ली, जिन माता पिता की गोद में ये शरीर पैदा हुआ उनसे भी सेवा और प्यार लिया, और अब उस अनंत ऐश्वर्यवान सृष्टिकर्ता के आधार को पकड़ के बैठे हैं, तो अब उनसे भी सब प्रकार से सेवा और प्यार ले रहे हैं। मिलता है भाई, बहुत मिलता है।